हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 5 से स्टार्ट करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। न कामयेनाथ तदाप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजस्व। महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विदेत् स्वकर्णो युतमेष मे वर। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम्। प्रणामो दुःखशमनम् तं नमामि हरिपरम्। तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मङ्गलमोहसं महत्तामपि विद्धये कांतिक निष्कृतम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशो जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन छोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 7 जिसका शीर्षक है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। और इस अध्याय में विदुर महाराज बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न मैत्रेय ऋषि से पूछ रहे हैं। कल विदुर जी ने कहा ब्रह्म कथम भगवतश्चन्मात्र या विकारिण लीलया चापि युज्येरन निर्गुणस्य गुणक्रिया। के विदुर जी ने कहा हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं वो संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि हैं और अविकारी हैं, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह से संबंधित है। यदि यह उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह से घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। उसके उपरांत विदुर जी ने कहा बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि कुछ ऐसा हो जिससे हम आनंद, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित होते हैं। किंतु भगवान में ऐसी कोई इच्छा तो नहीं है, क्योंकि वे आत्मसंतुष्ट है, वे सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। फिर वो लीला किस तरह से करते, क्यों करते हैं। आगे पूछ रहे थे कि भगवान ने प्रकृति के तीन गुणों की स्वरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई, वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे वह पुनः उसका लय भी करते हैं, तो इसके विषय में भी मुझे कुछ बताइए। और आगे कहा कि देशतः कालो, यहाँ तक पढ़ा, हाँ आगे आज हम श्लोक नंबर 5 से प्रारंभ करेंगे। कृपया इन अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। विदुर जी आगे पूछ रहे हैं कि दीशतः कालतो यो सा अवस्थात ध्यातः स्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येताजया कथम् देशतः कालतो वा योऽसौ अवस्थातः स्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येताजया कथम् देशतः कालतो यो देशतः मतलब परिस्थितिवश कालतः मतलब काल के प्रभाव से यानी देश काल और परिस्थिति और यो यो सॉरी यो मतलब जो असौ मना जीव अवस्थात मतलब स्थिति से स्वतः स्वतः मतलब स्वप्न से अन्यतः अन्यों द्वारा अविलुप्त लुप्त अवबोध यानी चेतना आत्मा यानी शुद्ध आत्मा और स युज्येत युज्येता जया कथम स मन वह युज्येता यानी संलग्न अजया यानी अज्ञान द्वारा कथम यह ऐसा किस तरह है। अभी विदुर जी बहुत महत्वपूर्ण बात पूछ रहे हैं, अनुवाद देखिए। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है, जो हमारी आत्मा है वो तो बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, भगवान का अंश है। तो देशतः कालतो योसात तो फिर काल स्थिति या स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता। तो जो आत्मा है वो तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है? यानी अब देखो हमारी जो आत्मा है वो तो शुद्ध है, पवित्र है, शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है, ठीक है। और वो जो चेतना हमारी है वो कभी भी परिस्थिति काल या स्थिति या स्वप्न अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर तो नहीं होता। आत्मा और चेतना सदैव इकट्ठे होते हैं, अलग तो नहीं होते हैं। जहाँ चेतना है वहीं आत्मा है। अगर समझो किसी जीव के अंदर आत्मा है तो उसका हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि उसके अंदर चेतना होगा, उसके अंदर मूवमेंट होगी, उसके अंदर शऊर होगा, वो कुछ करेगा, है ना। चल भले सपने में भी हो जीव, लेकिन फिर भी आत्मा किसी भी स्थिति में चेतना जो है आत्मा से अलग नहीं होती, कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता। तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है? फिर वो जो चेतना है हमारी वो अविद्या में कैसे लिप्त हो जाते हैं? श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सजीव प्राणी में चेतना सदैव विद्यमान रहती है, और जैसा कि ऊपर कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता। जब कोई जीवित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो वह सचेत रहता है कि उसने अपनी स्थिति बदल दी है। वह सदैव बिजली की तरह भूत वर्तमान तथा भविष्य में विद्यमान रहता है। वह अपने भूतकाल की घटनाएं स्मरण रख सकता है और विगत अनुमान के आधार पर अपने भविष्य के विषय में भी अनुमान लगा सकता है। अब ये कैसे है? श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो हमारी चेतना है वो सदैव हमारे साथ रहती है। जहाँ पर आत्मा होती है चेतना सदैव विद्यमान रहती है, हर वक्त होती है, जैसा कि हमने श्लोक में पढ़ा है, और वो कभी भी बाहर नहीं होती। और जब कोई एक व्यक्ति जीवित व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो सचेत रहता है अपनी कि उसने अपनी माना स्थिति बदल दी। उसको पता है कि पहले मैं इस रूम में था फिर दूसरे रूम में आया, या इस जगह पे था दूसरी जगह पे आया। तो वह सदैव बिजली की तरह, जैसे बिजली होती है वो किस तरह से करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, तो भूत वर्तमान तथा भविष्य में विद्यमान तो रहती है, हर जगह होती है, और इस तरह से पावर जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। तो वह अभी जो जीव है वो अपने भूतकाल की घटनाएं स्मरण रख सकता है। भूतकाल की घटनाएं जैसे हमें याद होगा कि हम बचपन में किस तरह से कार्य करते थे, और बाद में अक्सर ऐसा होता है कि हमको याद रहता है कि मैं ऐसा किया तो उसका ये रिजल्ट मिला, अभी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी भूतकाल जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है और हमें पता चलता है, तो भूतकाल की घटना स्मरण रख सकता है और फिर विगत अनुभवों के आधार पर अपने भविष्य के विषय में भी अनुमान लगा सकता है। ऐसा कैसे है? जैसे हमको याद रहता है कि अगर मैंने पहले ऐसा किया, जैसे अगर कोई नशा करता है तो फिर नशा करने के बाद उसको बीमारी हो जाती है, कोई जैसे सिगरेट पीता है तो उसको उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको टीबी हो जाता है या हो जाता है, तो उसको ये याद रहता है कि अब भी विगत अनुभवों के आधार पर, बहुत सारे दूसरे लोगों को भी हम देखते हैं कि कोई चोर चोरी कर रहा है तो उसका रिजल्ट उसको क्या मिलेगा कि वो जेल में चला जाएगा, पुलिस उसको पकड़ लेगी, कोई गलत काम करेगा तो उसको ये तो फिर विगत अनुभवों के आधार पर हम अपने भविष्य के विषय में भी अनुमान लगा सकते हैं कि अभी अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट ये आने वाला है। अगर हम आज अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसका कभी भी गलत रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे एक बार श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, आप तो सारे लोगों को हर वक्त बोलते हो हरे कृष्णा जप करते रहो और चार नियम का पालन करो, मांसाहार मत करो, नशा मत करो और ये मत करो, वो मत करो, चाय कॉफी मत यूज करो और कांदा लहसुन मत खाओ, अगर आप भगवान के पास जब चले जाओ और आपको पता चले कि ये सब तो करना ही नहीं था, ये तो था ही नहीं, कुछ और करना था, तो आप क्या करोगे? तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं और बोलते हैं कि हम कृष्ण भावना भावित होने के बाद प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो बुरे कामों को छोड़ता है, गलत कार्यों को छोड़ता है, अहिंसा का धर्म जो है वो अपनाता है, किसी की हिंसा नहीं करता, किसी को दुख नहीं पहुंचाता, किसी की निंदा नहीं करता, गलत कार्य नहीं करता, अवैध संग नहीं करता, नशा नहीं करता, मांसाहार नहीं करता और उसके साथ साथ में वो भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो ये सारे कार्य जो हैं उसके लिए शास्त्र, और हम अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं करते, वो तो शास्त्र के आधार पर भगवान कहते हैं नहीं कल्याण कृत कर्षित दुर्गतिम तात गच्छति, जो अच्छा करेगा उसके ऊपर कभी भी जो बुराई है वो विजयी प्राप्त नहीं करेगी, अच्छाई के ऊपर हमेशा भगवान का साथ होगा, जो धर्म के साथ रहेगा, जो शास्त्रों के साथ चलेगा उसका, तो हम तो आचार्यों और शास्त्रों के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आप कह रहे हो कि हो सकता है कि बाद में पता चले कि ये सब सही नहीं है, तो आप हमारी छोड़िए, हमारी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो गुरु साधु शास्त्र और भगवान के आदेश के अनुसार कर रहे हैं और हमें डेफिनेटली पता है कि इसका जो भविष्य में हमारा रिजल्ट जो निकलेगा वो बिल्कुल परफेक्ट निकलने वाला है। भगवत प्राप्ति हमें पूरा पूरा भगवान के शब्दों पर, गुरु के शब्दों पर, शास्त्र के शब्दों पर पूरा पूरा भरोसा है। परंतु आपने कभी अपने बारे में विचार किया है कि आप भगवान का नाम जप नहीं करते, आप मांसाहार करते हो, आप नशा करते हो, आप गलत कार्य करते हो और आप जब भगवान के पास, मतलब मृत्यु के बाद आप जब यमराज के पास जाओगे और आपको ये कहा जाएगा कि आपको मनुष्य जीवन इसलिए नहीं दिया गया था बल्कि भगवान की भक्ति करने के लिए दिया गया था, तो तुमने ये मनुष्य को होते हुए जानवरों जैसे कार्य क्यों किए, तो फिर तुम क्या जवाब दोगे? तो जो हम कार्य करते हैं उस कार्य के अनुभव के अनुसार, यानी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं विगत अनुभवों के आधार पर अपने भविष्य के विषय में हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज अगर हम गलत कार्य करेंगे तो डेफिनेटली उसके कारण हमें दुख भोगना पड़ेगा, और यदि हम सही करेंगे, शास्त्रों के अनुसार भगवान की खुशी के लिए कार्य करेंगे, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट में हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं वह कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं भूलता, चाहे वह विकट परिस्थिति में क्यों न फंसा हो, तो फिर जीव शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को भुलाकर पदार्थ के साथ अपनी पहचान कैसे कर सकता है, जब तक वह अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित ना हो। यहाँ शिला प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे कि हम कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं बोलते हैं। व्यक्तिगत मतलब अपनी जो आइडेंटिटी है कि मैं इसका बेटा हूँ या फिर मैं ये हूँ, जीव कभी भी नहीं बोलता है। और वह कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं बोलता, चाहे वह विकट परिस्थिति में क्यों ना फंसा हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने आप को तो जानते ही हैं कि मैं ये हूँ, मैं अपने ना मतलब कुछ भी स्थिति हो, कोई डॉक्टर होता है तो अपना नाम तो जान रहा होता है, अपनी स्थिति तो जानता है, अपनी आइडेंटिटी तो वो नहीं बोलता। तो फिर जीव शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को भुलाकर पदार्थ के साथ अपनी पहचान कैसे कर सकता है, जब तक वह अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब जीव क्यों अपनी रियल स्थिति को भूल जाता है, मतलब जीव कैसे भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ और अपने आप को शरीर समझने लगता है, उसका कारण श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब तक वह अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित ना हो। मतलब कोई तो ऐसी वस्तु है जो हमसे शक्तिशाली है और वो हमको प्रभावित करती है, जिसके कारण हम अपनी रियल पहचान को भूल जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, निष्कर्ष यह निकलता है कि जीव अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित होता है। ये अविद्या, ये अज्ञानता जिसके कारण हम प्रभावित हो जाते हैं। और जैसे कि विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवतम के आरंभ में इसकी पुष्टि हुई है, श्रीमद् भगवद गीता 7.5 में जीव को परा प्रकृति कहा गया है और विष्णु पुराण में जीव का उल्लेख पराशक्ति के रूप में हुआ है। वह शक्ति के रूप में भगवान का अंश है किंतु शक्तिमान के रूप में नहीं। अब यहाँ पर जीव के विषय में बताया कि वो तो भगवान की परा प्रकृति है और ये जो भौतिक जगत है वो भगवान की यहाँ परा प्रकृति है। वो शक्ति के रूप में भगवान का अंश है, शक्ति के रूप में, यानी कि जब भगवान की वो अंश है तो भगवान की शक्ति है। लेकिन अगर वो अपने आप को शक्तिमान कह दे तो वो भगवान का अंश नहीं। मतलब शक्तिमान अनेक शक्तियां प्रदर्शित कर सकता है, किंतु शक्ति किसी भी अवस्था में शक्तिमान की समता नहीं कर सकती। हम शक्ति हैं भगवान की, तो भगवान जो है वो शक्तिमान है। तो शक्तिमान जो है वो तो बहुत सारी शक्तियां प्रदर्शित करता है, परंतु शक्ति किसी भी अवस्था में शक्तिमान की समता नहीं कर सकती। हम कभी भी भगवान के बराबर नहीं हो सकते, हम भगवान के अंश हैं और भगवान शक्तिमान है। तो एक शक्ति द्वारा दूसरी शक्ति द्वारा पराभूत हो सकती है, किंतु शक्तिमान के लिए सारी ही शक्तियां वश में होती हैं। अब भगवान की एक शक्ति है अविद्या शक्ति, एक शक्ति है पराशक्ति, एक शक्ति है अपराशक्ति, यानी जीव और ये भौतिक जगत, और एक है अविद्या। तो ये जो शक्तियां हैं वो एक दूसरे के द्वारा पराभूत हो सकती है, मतलब एक दूसरे के द्वारा कंट्रोल्ड हो सकती हैं। जैसे माया के द्वारा जीव कंट्रोल हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना तो हमें समझना चाहिए कि शक्तिमान के लिए सारी शक्तियां वश में होती हैं। भगवान तो सब किसी का कंट्रोलर होता है, भगवान कभी भी किसी वस्तु या शक्ति के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं है, वो कंट्रोलर है। जीव शक्ति या भगवान की क्षत्रिय शक्ति में बहिरंग शक्ति अर्थात अविद्या कर्म संज्ञा द्वारा पराभूत होने की प्रवृत्ति होती है और इस प्रकार वह भौतिक जगत की विषम परिस्थितियों में रखा जाता है। जीव अपनी असली पहचान को तब तक भुला नहीं सकता जब तक वह अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित ना हो। जो के जीव में अविद्या शक्ति के प्रभाव की ओर झुकाव रहता है, अतएव वह कभी भी परम शक्तिमान के तुल्य नहीं हो सकता। अब अविद्या शक्ति यानी अज्ञानता, ये अज्ञानता, ये मोह जो कि हमको भुला देता है बार बार। हम देखो यहाँ पर देखते हैं, हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम भगवान का अंश हैं, लेकिन ये अविद्या शक्ति कितनी पावरफुल है कि हम कोई भी कार्य आत्मा के लिए नहीं करते। सुबह से लेकर रात तक जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जीव जानते हैं कि हम आत्मा हैं, फिर भी वो कार्य तो उसी शरीर के लिए कर रहे होते हैं, खाना पीना सोना उठना। अगर हम आत्मा हैं तो फिर हमें इन सब वस्तुओं की क्या ज़रूरत है जो संसार में जिसके लिए हम पूरा जीवन बिता देते हैं। अगर हम आत्मा हैं तो हमारे इस भौतिक जगत के साथ या इनके इसमें रही हुई वस्तु और व्यक्तियों के साथ क्या संबंध है। लेकिन ये अविद्या शक्ति इतनी पावरफुल है कि श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव तब तक अपनी असली पहचान को तब तक नहीं बुला सकता जब तक वह अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित ना हो, क्योंकि जीव में अविद्या शक्ति के प्रभाव की ओर झुकाव होता है, अतः वह कभी भी परम शक्तिमान के तुल्य नहीं हो सकता, वो भगवान के बराबर नहीं हो सकता। तो यह अविद्या शक्ति जीव को क्यों बुला देती है? क्योंकि जीव की इच्छा है कि वो भोग करे। अगर उसे याद रहेगा कि मैं आत्मा की आत्मा हूँ, भगवान की शक्ति हूँ, तो वो कैसे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेगा? और फिर वो जब तक अपनी उसके अंदर इच्छा रहेगी तो वो तो कभी भी भगवान की भक्ति तो फिर भी नहीं करेगा, भगवान को स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए भगवान उसे अविद्या के द्वारा प्रभावित करके उसे अवसर देते हैं कि भोग लो संसार को, और इस तरह जीव का जो है वो इस अविद्या के प्रति झुकाव बढ़ता है। लेकिन भगवान जो है वो परम शक्तिमान है, वो शुद्ध है, वो परम पावर वाला है, वो किसी भी शक्ति के अंडर में कंट्रोल नहीं होता है, भगवान सारी शक्तियों को कंट्रोल करता है। आगे विदुर जी बहुत सुंदर पूछते हैं, वे कहते हैं भगवान एक एवेश सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। वे कहते हैं भगवान एक एवैष, भगवान यानी भगवान, एक का मतलब एकमात्र, एवैष यानी ये सभी, सर्व क्षेत्रे अवस्थित, सर्व मन समस्त क्षेत्रेषु यानी जीवों में अवस्थित स्थित रहते हैं। अमुष्य दुर्भगत्वम, अमुष्य मतलब जीवों का, दुर्भगत्वम अर्थात दुर्भाग्य वा या क्लेशो वा कर्म भी कुतः। क्लेशो यानी क्लेश कष्ट, वा अथवा कर्म भी यानी कर्मों द्वारा, कुतः मतलब किस लिए। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वे कहते हैं भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित हैं। भगवान एक एवैष सर्व क्षेत्रेषु अवस्थितः, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। तो फिर अमुष्य दुर्भगत्व क्लेशो, फिर भी जीव जो है वो कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? जीव भगवान के होते हुए जीव दुख क्यों भोगता है, दुर्भाग्य क्यों आता है, कष्ट क्यों आता है? तो फिर भगवान के होते हुए, क्योंकि भगवान ने उसको परमात्मा के स्वरूप में प्रेरणा दी होगी, अनुमति दी होगी, फिर उसी अपराध का, दुर्भाग्य या कष्ट उस जीव को क्यों भोगना पड़ता है? अनुवाद देखिए, भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विदुर ने मैत्रेय से जो अगला प्रश्न पूछा वह है कि जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान की उपस्थिति के बावजूद उन्हें इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं? शरीर को फलवान वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा रूप में भगवान उसमें बैठे दो पक्षियों के तुल्य हैं। यानी कि जो शरीर है वो एक ऐसा वृक्ष है जो हर एक वस्तु को फल को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, और जीव आत्मा और परमात्मा दो पक्षी हैं जो इस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए। अब व्यष्टि आत्मा उस वृक्ष का फल खा रहा है। जीव शरीर के अंदर बहुत सारे फल, मतलब भोगने की बहुत सी इंद्रियां हैं, और आत्मा जो है वो इसके अंदर बैठकर उन सारी सारे फलों का भोग कर रहा है। किंतु परमात्मा रूप में भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों का साक्षी बना रहता है। उपदृष्टा अनुमंता, वो सिर्फ देख रहा होता है। राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है, किंतु यह कैसे संभव है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थिति रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित हो। तो विदुर जी के प्रश्न को श्रील प्रभुपाद जी और भी क्लियर करके पूछ रहे हैं कि राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में, जैसे कोई जो नागरिक है, अगर कोई राज्य पुलिस वाले होते हैं, अगर वो नहीं अपना काम करेंगे, निरीक्षण नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, जैसे हम जाते हैं रोड पर, अगर कोई ना ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ा होगा तो फिर तो जाहिर सी बात है कोई लोग क्या करेंगे, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेंगे। लेकिन अभाव में कष्ट में रहता है, किंतु यह कैसे संभव है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थित रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित हो। तो स्वयं भगवान भी बैठे हुए हैं तो फिर जीव जो है वो गलत कार्य कैसे करता है। और उसी को यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, अतएव जीव की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान उपस्थित है परमात्मा के रूप में, तो उसका ज्ञान जो है वो अविद्या के द्वारा प्रच्छन्न कैसे हो सकता है। तो फिर जीव किस तरह से अज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से प्रच्छन्न हो जाता है, फिर जीव कैसे अज्ञान के द्वारा वशीभूत हो जाता है और माया जो है माया के द्वारा किस तरह से उसका ज्ञान प्रभावित हो जाता है। और उसी बात को श्री प्रभुपाद जी दूसरे ढंग से कहते हैं कि भगवान हर जीव के पिता हैं तथा रक्षक हैं, और वे भूत भृत अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं? कोई पिता चाहेगा क्या कि मेरे संतान को दुख मिले, मेरे संतान को कष्ट मिले? तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, हम पिता माता नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे को कष्ट मिले, लेकिन हम फिर भी सर्वज्ञ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं, चाहकर भी अपने बच्चों की रक्षा नहीं करते। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं। आज संसार में हम देख सकते हैं कि लोगों को कितना दुख मिल रहा है, जीव कितना दुखी है, कोई भीख मांग रहा है, सड़कों पे किसी पास खाने के लिए नहीं है, किसी को इतना उनके साथ बुरा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत कार्य होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि संसार में कितने अपराध हो रहे हैं, कितने अपराधों के कारण कितने जीव जो है वो दुख में है, कितने जीव जो है वो कष्ट में है। किसी के बच्चे की शादी होने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, किसी के ना घर में कोई बीमार है तो उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, कोई और कोई लोग जो है ना इतना मुश्किल से धन कमाते हैं और उसका चोर जो है वो छीन के चले जाते हैं। मतलब अनगिनत दुख है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम तो देखो अपने घरों में एसी रूम में आराम से बैठे हुए होते हैं ना, हमको खबर भी नहीं है कि संसार में इतने सारे दुख हैं। वो तो जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, जो सोशल ज्यादा जिनके साथ ना एक्टिविटीज होंगी, उनको पता होगा कि कितने दुख हैं। तो यहाँ एक प्रश्न तो फिर भी उठता है कि भगवान हर जीव के पिता है तथा रक्षक हैं, पिता है वो, रक्षक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और वो भूत वृंद अथवा जीवों के पालक कहलाते हैं, सारे जीवों के रक्षक हैं, पालक हैं, सुहृद हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य तथा वो क्यों भोगने पड़ते हैं, फिर क्यों उनको ना दुख भोगने पड़ रहे हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है ना। तो अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। विदुर बोलते बताओ, हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति में जीव अपराध करता क्यों है, और जो लोगों को दुख मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है। आगे विदुर जी एक और प्रश्न, इस अध्याय का नाम क्या है? विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। तो ये सारे प्रश्न हैं और इनको मैत्रेय मुनि बहुत सुंदर रीति से आंसर करेंगे, लेकिन हम अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। आखिरी यहाँ पर श्लोक नंबर 7 में एक और प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञानसंकटे तन्नः पराणुदः विभो कश्मलं मानसं महत् एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञानसंकटे तन्नः पराणुदः विभो कश्मलं मानसं महत् एतस्मिन् इसमें मैं यानी मेरा मन यानी मन विद्वान हे विद्वान खिद्यते कष्ट दे रहा है मतलब ये जो प्रश्न है उसके कारण मुझे बहुत दुख हो रहा है कि क्यों लोग है ना दुखी होते हैं भगवान किसी की सहायता नहीं करते इतना सुर्द हैं और ये शुद्ध आत्मा है वो क्यों प्रभावित हो जाती है अविद्या के कारण तो इसके कारण खिद्यते मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है अज्ञान यानी अविद्या संकटे यानी संकट में तत् यानी इसलिए मैं यानी मेरा और आगे भी कहते पराणुत विभो पराणुत मना स्पष्ट कीजिए मुझे बताइए विभो मना आप महान हैं आप बता सकते हैं क्या कश्मलम मानसम महत कश्मलम यानी मोह मानसम मतलब मन विषय मोह महत महत मना ज्ञान सॉरी महान विदुर कहते हे महान एवं विद्वान पुरुष मेरा मन इस ज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें आप मुझे बताइए इनके विषय में श्री प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा मानसिक मोह जैसा कि यहाँ पर विदुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है कुछ जीवों के साथ घटित होता है किंतु हर एक के साथ नहीं क्योंकि यदि हर व्यक्ति मोहित होता तो उच्चतर पुरुषों द्वारा उसके समाधान की कोई संभावना ना रहती तो ये भी एक मोह है कि हमें भगवान की इस माया को समझ में नहीं आता है तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ भगवान के भक्त जो हैं उनके ऊपर है ना ऐसा मोह होता है और उससे जो उच्चतर पुरुष होते हैं वो इस मोह का समाधान करते हैं विदुर निश्चित रूप से भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके मन में कोई ऐसा मोह नहीं है लेकिन वो हम सब के हृदय में जो ये सब प्रश्न हैं भगवान के विषय में उनका समाधान ढूंढने के लिए मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं इसे आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री शुक उवाच स इत्थं चोदिता क्षात्रा तत्वजिज्ञासुना मुनि प्रत्याह भगवच्चित्त समयं निवगतस्मया स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्नेव गतस्मयः तो वो कहते हैं स इत्थम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स मन वह मैत्र मुनि इत्थम मुनि इस प्रकार चोदितः मन क्षुब्ध किए जाने पर क्षत्रा विदुर द्वारा तत्व जिज्ञासुना यानी सत्य जानने की के लिए पूछताछ करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा जिज्ञासु द्वारा जब क्षत्या मना जो विदुर जी हैं उनको क्षत्रा कहा जा रहा है और उन्होंने जब इस तरह की पूछताछ की इन्होंने जब इस तरह का जिज्ञासा की तो मुनि यानी मुनि ने कौन मुनि मैत्रेय मुनि ने प्रत्याह मना उत्तर दिया और भगवत चित्त यानी ईश भावना भावित बहुत ही सुंदर और स्मयन मतलब आश्चर्य करते पहले तो उनको आश्चर्य हुआ कि विदुर जैसा ज्ञानी होकर मुझसे ऐसी बात पूछ रहा है और इव मानो स्मयन इव स्मयन इव गतस्मय मतलब हिचक के बिना पहले तो आश्चर्य हुआ उनको लेकिन फिर उन्होंने बगैर किसी हिचक के उनको उत्तर दिया अनुवाद देखिए। शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा क्षुब्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्होंने उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे, भगवत चित्त, क्योंकि भगवान के अंदर उनका चित्त लगा हुआ था। तो उन्होंने विदुर जी को उत्तर दिया, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि महामुनि मैत्री ईश भावना भावित थे, तत्व जिज्ञासुना मुनि, वो जो विदुर जी जो थे वो तत्व जिज्ञासा चाहते थे, वो जिज्ञासा कर रहे थे, और ये प्रत्याह भगवत चित्त, इनका जो चित्त था वो भगवान में लगा हुआ था, मैत्रेय मुनि का। तो श्री प्रभुपाद जी कहते ईश भावना भावित थे, अतः विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्नों से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण न था। वो बहुत परस्पर पूछ रहे थे कि वो जानते भी थे कि भगवान जो हैं वो माया से रहित हैं, फिर कैसे भगवान जो हैं वो ऐसे कार्य करते हैं और लोग संसार में आते हैं, वो अविद्या से किस तरह से ना हो सकते हैं, क्योंकि अविद्या तो उनको तब जकड़े जब उनके मन में परमात्मा के रूप में भगवान है, फिर भी संसार में आकर वो गलत कार्य करते हैं भगवान के होते हुए, और फिर उनको कष्ट भी भोगना पड़ता है, क्योंकि कष्ट तो उनको भोगना क्यों पड़ता है, क्योंकि भगवान तो उनके सूरत हैं, तो भगवान तो माता पिता हैं, तो फिर क्यों उनको है ना कष्ट और दंड भोगना पड़ता है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने पूछी, तो आश्चर्यचकित होने का श्री प्रभुपाद जी बोलते कोई कारण नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि ये भगवान के भक्त हैं। इसीलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे ये नहीं जानते हों कि इन प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतया स्थिर चित्त हो गए और उचित रीति से विदुर को उत्तर देने लगे। तो वो बहुत ही स्थिर होकर विदुर जी को उत्तर देने गए। यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवम विज्ञातम भवति, इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है, और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी व्यक्त करता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। अब ये बहुत सुंदर बात है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि जो भगवान का भक्त होता है वो कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है, मतलब भगवान को पूरा तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन फिर भी देखने में भले ही भगवत भक्त लगता है कि ये तो कितना मासूम है, इसको है ना अज्ञानी है, लेकिन भगवत भक्त भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ होता है। अब देखिए, प्रहलाद महाराज कितने छोटे थे, 5 साल के बच्चे हैं, और आज हम प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स पढ़ते हैं, बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो ऐसी बात नहीं बता सकते जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं, इतनी सुंदर उनकी शिक्षा है। तो और भगवान का जो भक्त होता है, भक्ति करते 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 उसके अंदर इतना ज्ञान होता है, भगवान स्वयं कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, जो प्रेम से मेरा भजन करता है उसको मैं बुद्धि देता हूँ। तो ये जो प्रीचिंग है वो आपको अपने ज्ञान से प्राप्त नहीं होती, वो तो भगवान की भक्ति करते 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 जीव जो है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है, उसको ज्ञान प्रदान करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको शास्त्र पढ़ना ही नहीं चाहिए, हमको लेक्चर सुनने ही नहीं चाहिए, बस बैठ के ना स्मरण करते 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 ज्ञान आ जाएगा, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सिद्धांत बली या चित्ते न कर आलस, कि हमको सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए, भागवतम को श्रवण करते करते उस शुद्ध भक्तों से श्रवण करने का, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करके या विद्वान होकर हम जो है वो भगवान को नहीं समझ सकते, उसके लिए हमको दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान के पवित्र नाम का जप करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हम कुछ इस योग्य हो सकेंगे कि जटिल विषय पर कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो आगे अब मैत्रेय मुनि जो हैं वो उत्तर दे रहे हैं विदुर जी के प्रश्नों का। मैत्रेय उवाच सेयम भगवतो माया यन्येन विरुध्यते यन्येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्य उत्बन्धनम् सेयम् भगवतो माया यन्येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम् उत्बन्धनम्। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं सेयम, सेयम यानी ऐसा कथन, भगवता यानी भगवान, भगवान की माया यानी माया, यन ये न विरोध्यते, यन ये न मतलब तर्क द्वारा, विरोध्यते मतलब विरोधी बन जाता है, और ईश्वरस्य विमुक्तस्य, ईश्वर यानी भगवान का, विमुक्तस्य मतलब नित्य मुक्त का, कार्पण्य अपर्याप्तता उत किया गया, किया कहा, सॉरी क्या कहा जाए, जैसा भी बंधनम वो बंधन है। अनुवाद देखिए, श्री मैत्री ने कहा कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है। सेयम भगवतो माया यन ये न विरुध्यते, ये विरुद्ध आवास है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि उस भगवान को माया द्वारा जीता जाता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अभद्ध हैं, यह समस्त तर्क के विपरीत है। अब ये मैत्रेय मुनि बहुत ही सीक्रेट बात बता रहे हैं कि कुछ बद्ध जीव, बद्ध माना जो खुद गुणों में बंधे हुए हैं, वो ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है। वो बोलते हैं हाँ भगवान जो है वो माया में आ जाते, खुद बद्ध जीव हैं और फिर भी भगवान को माया के द्वारा जीता जाने वाला सोचते हैं। और साथ साथ में एक उनका ये भी मानना है, वो ये भी मानते हैं कि हम अबद्ध हैं, यानी कि मैं, हमको माया ने नहीं कंट्रोल किया हुआ है लेकिन भगवान को माया। तो ये सब तर्क जो हैं वो विपरीत हैं, और इसको बहुत ही डिटेल से श्री प्रभुपाद जी हमें उसमें तात्पर्य में समझाएंगे। हम सब ध्यान से श्री प्रभुपाद जी के शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान जो कि शत प्रतिशत आध्यात्मिक है, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते जो व्यष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है। हमारे जो ज्ञान को जो माया प्रच्छन्न कर देती है, हमें मोहग्रस्त कर देती है, उसका कारण जो है वो भगवान नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि वो भगवान तो आध्यात्मिक है। किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं कि माया या बहिरंगा शक्ति भी भगवान का अंश है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये हमें संशय नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी है भगवान की शक्ति है, तो बहिरंगा शक्ति भी भगवान का ही अंश है। जब व्यास देव ने भगवान का साक्षात्कार किया तो उन्होंने भगवान को अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ देखा, जो व्यष्टि जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवृत करती है। अभी व्यास देव ने जब शुरू शुरू में भागवत लिखने से पहले भगवान का ध्यान किया था ना, तो उस समय उन्होंने ध्यान में भगवान को देखा और माया को देखा, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति माया है उसको देखा, और वो क्या कर रही थी, व्यष्ट जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवृत कर रही थी, वो शुद्ध ज्ञान को ढक रही थी। तो बहिरंगा शक्ति इस तरह क्यों कर्म करती है, इस पर निम्नवत विचार किया जा सकता है। अब श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि माया आखिर हमें मोहग्रस्त क्यों करती है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रीला जीव गोस्वामी जैसे महान टीकाकारों ने विश्लेषण किया है कि यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से पृथक होती है, भगवान की दो शक्तियां हैं, एक बहिरंगा शक्ति एक अंतरंगा शक्ति, जो भौतिक शक्ति है वो माया है और वो आध्यात्मिक शक्ति से अलग होती है, तथापि यह भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है। लेकिन फिर भी भगवान ने स्वयं स्वीकार किया ना 7.14 में, मम माया दुरत्यया, ये माया शक्ति मेरी ही शक्ति है। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि बलि वो पृथक है, अलग है, लेकिन फिर भी भगवान की शक्ति। और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के ही गुण हैं। अब जो भौतिक गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तम, वो भगवान के ही हैं। तो शक्ति तथा शक्तिमान भगवान पृथक पृथक नहीं हैं। जो शक्ति, अभी देखो शक्ति जो है वो भगवान का ही, मतलब शक्तिमान का ही अंश है ना, वो दोनों अलग अलग तो नहीं है। जैसे हमारे अंदर चलने की शक्ति है तो ऐसा नहीं शक्ति अलग है और मैं अलग हूँ, मेरे अंदर बोलने की शक्ति तो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, पृथक नहीं है। तो शक्ति तथा शक्तिमान भगवान पृथक पृथक नहीं है। यद्यपि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इससे कभी भी वशीभूत नहीं होते। यद्यपि सारे जीव भी भगवान के बिना अंश हैं, किंतु वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। तो यहाँ एक बात समझने की, भले ही ये बहिरंगा शक्ति माया जो है वो भगवान की शक्ति है, लेकिन फिर भी भगवान उससे वशीभूत, कंट्रोल कैसे होंगे, वो तो उनकी शक्ति है ना। तो यद्यपि सारे जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, सब भगवान के अंश हैं, लेकिन वे भौतिक शक्ति के द्वारा पराजित हो जाते हैं। तो भगवान का अचिंत्य योगम ऐश्वरम, जैसा कि वर्णन भगवद गीता 9.5 में हुआ है। तो श्रीला प्रभुपाद जी 9.5 का बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उसको भगवान ने कैसे भगवान कहते हैं, न चमस्थानी भूतानी पश्यमे योगम ऐश्वरम भूतबृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। कि फिर भी न चमस्थामि भूतानि, ये सारे संसार मुझ में नहीं है, पश्यमे योगम ऐश्वरम, मैं सारे संसार को भूतबृन्न च भूतस्थो, उसके अंदर रहकर संसार की पालना भी करता हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं इनसे पृथक हूँ। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान की अचिंत्य भोगे योगमेश्वरी, जैसा कि वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 9.5 में हुआ है, कूप मंडूक दर्शनों को द्वारा ठीक से नहीं समझा जाता, वो नहीं समझ पाते। वो बेचारे कुएं के मेंढक वो कहाँ से समझ पाएंगे कि भगवान जो है वो किस तरह से संसार में रहकर भी माया से प्रभावित नहीं होते। वे सिद्धांत के समर्थन में कि नारायण यानी स्वयं भगवान दरिद्र नारायण बनते हैं, यह प्रस्ताव रखते हैं कि भौतिक शरीर परमेश्वर को पराजित करती, भौतिक शक्ति परमेश्वर को पराजित करती है, किंतु श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या में एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब भगवान जो है वो स्वयं ही दरिद्र नारायण बनते हैं, मतलब व्हाट, दरिद्र नारायण, भगवान कभी भी दरिद्र नहीं बनते। दरिद्र क्यों बनाए, कोई जीव बनाए ताकि उसने ऐसे कार्य किए कि उसको दरिद्र बनना पड़ता है, उसके कर्मों के अनुसार उसको कष्ट मिलना पड़ रहा है। भगवान कभी भी दरिद्र नहीं बनते। तो उसका उत्तर जो है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि सूर्य सर्वतः प्रकाशित प्रकाश देता है, किंतु बादल, अंधेरा तथा हिमपात, ये सभी सूर्य के भिन्नांश हैं। सूर्य के बिना बादलों का अंधकार से आकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती। अब देखो बादल किस तरह से बनते हैं, जब सूर्य जो समुद्र के पानी को तपा देता है तो वो पानी भाप बनकर बादल बनता है, ठीक है। तो बादल कैसे बने, सूर्य के कारण। अगर सूर्य नहीं होता तो बादल नहीं बनते, ना ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। अभी वही बादल जो हैं वो हिम मतलब बर्फ बरसाते, कहीं कहीं बर्फ जम जाती है। तो यद्यपि सूरज द्वारा जीवन का पालन होता है, किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न अंधकार तथा हिमपात से जीवन विचलित भी होता है। वही सूर्य जो है वो बादल बन जाता है और उसके कारण जो है वो बर्फ हिमपात होता है, बरसात होती है, अंधकार होता है, तो उससे के द्वारा जीव जो है वो विचलित होते हैं। किंतु यह भी तथ्य है कि सूर्य स्वयं कभी भी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता है। सूर्य नहीं होता है, सूर्य ऐसे उपद्रवों से बहुत दूर होता है। सूर्य तो बहुत ऊपर है, बादल तो बहुत नीचे हैं, लेकिन जो अल्पज्ञानी हैं वे ही कहते हैं कि सूर्य बादलों के या अंधकार से ढक जाता है। उसी तरह से परब्रह्म भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित होते हैं, यद्यपि यह उनकी शक्ति में से एक परास्य शक्ति विविधेव शूयते। तो अभी बादलों से कौन घिरा है? बादलों से तो हमारी जो दृष्टि है ना वो गिर जाती है। बादल के कारण हमको सूर्य नहीं दिखता है, क्योंकि सूर्य बहुत ऊपर है और बीच में बादल आ जाते हैं जिसके कारण हम सूर्य को नहीं देख सकते। सूर्य की शक्ति खत्म नहीं हुई है, हमारी दृष्टि पे बादल छा गए। समझ में आ गया ना? तो उसी तरह से भगवान की शक्ति जो है, भगवान परास्त नहीं होते, माया से भगवान नहीं छुपते हैं, बल्कि माया जो है वो हमें मोहित करती है जिसके कारण भगवान नहीं दिख रहे होते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, अतः माया द्वारा परब्रह्म के पराजित होने पर बल देने का कोई कारण नहीं है। बादल, अंधकार या हिमपात सूर्य की किरणों के एक निगरण या अंश को ही ढक सकते हैं। इसी तरह प्रकृति के गुण किरणों के सदृश जीवों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह जीव का दुर्भाग्य है जो अकारण नहीं है कि भौतिक शक्ति उसकी शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद पर प्रभाव डालती है। शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद का इस तरह प्रचन्न होना अविद्या कर्म संज्ञा के कारण है। वह शक्ति जो उन सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। अब यहाँ से श्रील प्रभुपाद जी बात को क्लियर कर रहे हैं कि देखो, ये जो जिस तरह से बादल जो है वो किसी एक जगह पर आ गया, उसी सिटी में खाली है ना सूर्य प्रकाश नहीं आ रहा है, तो उसी तरह से वही जीव जो अपनी भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, जो भगवान के शरण स्वीकार नहीं करते, जो भगवान की सेवा, भगवान के स्वरूप को या स्वयं को भगवान के दास के स्वरूप में स्वीकार नहीं करते हैं, वो प्रभुत्व जताना चाहते हैं, वो अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो फिर माया जो है वो उसके ऊपर प्रभाव डालती है। तो ये कोई श्रील प्रभुपाद जी ने कहा अकारण नहीं है, उसका कारण है। अविद्या जो है वो किसी कारण से जीव को है ना मोहित कर रही है। तो यहाँ विष्णु पुराण, भगवत गीता तथा अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों के अनुसार सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं और इस तरह वे सभी सदैव भगवान की शक्ति होते हैं। हम सब भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। भगवान की तीन शक्तियां, एक अंतरंगा जो कि भगवान का धाम, भगवान के पार्षद, और एक बहिरंगा यानी ये भौतिक जगत, और तीसरी शक्ति हम जीव जो भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। ये कहाँ बताया गया? सारे विष्णु पुराण, भगवत गीता और सारे शास्त्रों में इसकी पुष्टि हुई है। तो सारे जीव सूर्य की किरणों के समान हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यद्यपि सूर्य तथा उनकी किरणों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। अब देखो, सूर्य बहुत ऊपर है, किरणें नीचे हैं, लेकिन गुण वही है। किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें सूर्य की अन्य शक्ति जिसका नाम बादल या हिमपात है उसके द्वारा पराजित हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, सूर्य की किरणें पराजित हो जाती हैं और वो नीचे तक नहीं पहुंच सकती हैं। उसी तरह यद्यपि जीव गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक है, किंतु उनमें कनिष्ठा भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति होती है। भले भगवान का ये जो जीव है वो पराशक्ति है, लेकिन फिर भी तटस्थता है इसे माया के द्वारा वो पराजित हो जाती है। तो वैदिक स्तोत्रों में कहा गया है कि सारे जीव अग्नि की सफुलिंग जैसे हैं। सफुलिंग क्या होता है? अग्नि की जो चिंगारियां होती है ना, सब उस तरह से है। तो अग्नि की सफुलिंग भी अग्नि ही होते हैं, है ना, वो भी तो चिंगारियां भी एक तरह से अग्नि होती, किंतु सफुलिंगों की ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से भिन्न होती है ना। जो चिंगारी होती है ना वो अग्नि से अलग हो जाती है, तो उसकी जो शक्ति गुण वही होते हैं, लेकिन उसकी जो शक्ति होती है वो मूल अग्नि से, अग्नि की जो वो एक अग्नि का जो पुंज होता है उससे अलग होती है। जब सफुलिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर उड़ जाते हैं तो वे अग्नि विहीन वायुमंडल से प्रभावित होते हैं। अब देखो, पहले जब तक वो सफुलिंग, वो चिंगारी जो है अग्नि से जुड़ी हुई है, तब तक वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वो चिंगारी थोड़ी अलग हो जाएगी, और अलग होकर क्या होगा, बाहर जो संसार है उसमें तो हवा है और माया है, मतलब समझो, तो उसके कारण वो जो अग्नि की चिंगारी है जिसके अंदर अग्नि जैसे ही गुण हैं, ये जब वे सफुलिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर हो जाते हैं तो वे अग्नि विहीन वायुमंडल, यानी वहां पर वायुमंडल है, अग्नि नहीं है, तो उससे प्रभावित होते हैं। और इस तरह से सफुलिंग के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, वो इस तरह वे सफुलिंग के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, किंतु मूल अग्नि के रूप में नहीं। उसके पास अग्नि की शक्ति तो है लेकिन उतनी नहीं है, तो फिर ये सफुलिंग मूल अग्नि के भीतर शाश्वत रीति से उनके भिन्नांश के रूप में रह सकते हैं, किंतु जिस क्षण ये सफुलिंग मूल अग्नि से पृथक हो जाते हैं तभी उनके दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ हो जाते हैं। वो चाहते अगर उनके साथ ही रहते तो फिर उनको कोई भी नहीं हरा सकता था, वायुमंडल उसको परेशान नहीं कर सकता था, बहिरंग शक्ति उसको कष्ट नहीं दे सकती थी, लेकिन उसने अपनी इच्छा से उस अग्नि के जो मूल अग्नि है उसका संपर्क तोड़ दिया और वो बाहर जहाँ पर बहिरंग शक्ति है वहाँ पर आ गई। समझ में आया? हाँ, अग्नि क्या है? भगवान है, ठीक है, और हम सब भगवान के भिन्नांश हैं, यानी छोटी छोटी चिंगारियाँ। जब तक भगवान के साथ हम रहेंगे, भगवान के आध्यात्मिक जगत में, अंतरंग शक्ति में रहेंगे, तो हम सेफ हैं, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे ही हम बाहर यानी बहिरंग शक्ति में आते हैं तो फिर वहीं से हमारा दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ हो जाते हैं। स्पष्ट निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान जो कि मूल अग्नि है कभी पराजित नहीं होते, किंतु अग्नि की सूक्ष्म सफुलिंग माया के मोहक प्रभाव द्वारा पराजित हो जाते हैं। ये कहना अत्यंत हास्यास्पद तर्क है कि भगवान अपनी ही भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। मजाक की बात लगती है, भगवान ने इस बहिरंग शक्ति को बनाया, और बेवकूफ लोग वो बोलते हैं क्या कि भगवान जो है वो इस माया के द्वारा भगवान प्रभावित होते हैं, पराजित होते हैं। तो भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी है, किंतु जीव बद्ध अवस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। सिंपल सी बात है, जीव बद्ध अवस्था में आ गया, भौतिक जगत में आ गया, इस प्रकृति के अंदर जकड़ लिया गया, तीनों गुणों ने उसके ऊपर अपना प्रभाव बना दिया, तो फिर वो क्या करे, माया के भौतिक शक्ति के द्वारा नियंत्रित होता है। तो यह भगवत गीता का कथन है। वे कूप मंडूक दार्शनिक जो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भगवान सतोगुण द्वारा पराजित हो जाते हैं, वे स्वयं ही उसी भौतिक शक्ति द्वारा विमोहित रहते हैं। यद्यपि वे अपने आप को मुक्त आत्माएं बताते हैं, वो बोलते हैं हम मुक्त आत्माएं हैं, ये कृष्ण भौतिक जगत में आते हैं, ये ऐसे कार्य करते हैं, इसका कारण क्या जानते हो, वो भौतिक शक्ति के द्वारा पराजित हो जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी होते हैं, असल में वो स्वयं भौतिक शक्ति के द्वारा मोहित है, तो वे अपने तर्कों के समर्थन में मिथ्या तथा श्रम साध्य वाग जाल प्रस्तुत करते हैं। जो वो बातों के बातें ऐसी बताएंगे, ऐसे ऐसे भगवान के विषय में कहेंगे, तो वो केवल मिथ्या है, वो सिर्फ एक वर्ड जगलरी, शब्दों का जाल है, जो कि भगवान की उसी मोहिनी शक्ति का उपहार है। तो ये भी भगवान उनको अपनी शक्ति के द्वारा भगवान उनको यह अवसर देते हैं कि चलो ठीक है, तुम मुझे अगर सोचते हो, भगवान होते ये यथा माम प्रपद्यते, तुम जैसा सोचोगे ना, यम यम वापी स्मरण भाव, यम यम नहीं, यो यो याम यम तनुम भक्त्या श्रद्धया चितुम इच्छति, तुम जैसी जैसी श्रद्धा रखोगे ना, तम तमें वेती कौनते, मैं वैसी वैसी उसको श्रद्धा देता रहता हूँ। ठीक है, वो सोचते हैं कि मैं माया के द्वारा प्रभावित हूँ, तो ठीक है, वो उनको मैं ऐसी शक्ति प्रदान करता हूँ। ये भगवान इतने आश्चर्यजनक हैं, भगवान इतने करुणामयी हैं, भगवान को कभी कोई नहीं समझ सकता। भगवान देखो त्रिलोकी के नाथ हैं, उनको क्या जरूरत है संसार में आने की, क्या जरूरत है अर्जुन का सारथी बनने की, सारथी बनना कोई क्या कोई ना गर्व क्यों बात है। भगवान अपने भक्त के लिए क्या कुछ नहीं करते, वो भगवान जो राक्षसी भी अगर उसको दूध पिलाने के लिए आती है तो इतनी करुणामयी है। भगवान के पास सिर्फ प्यार है, भगवान सिर्फ प्यार निछावर करना जानते हैं। हम सोचते हैं ना, हम प्यार करते हैं, मनुष्य कितना प्यार करता है, पंछी भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ये प्यार जो है ना उस सीकर के जमाने है। सीकर समझते हो आप, जैसे अगर आप एक लकड़ी हो वो समुद्र के अंदर डालो या किसी पानी के अंदर डालो और उस लकड़ी को ऐसे छिड़को और छिड़कने के बाद बहुत सी छोटी 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 बूंदे निकलेंगी ना, उस बूंदे के हजारवें हिस्से के बराबर प्रेम है हमारे दिल में। और हम फिर भी अपनी संतान के लिए कितना करते हैं, और वो तो प्रेम का समुद्र है। भगवान के प्रेम को हम कभी नहीं समझ सकते, भगवान के प्रेम को हम खुद किसी भी नाप ढंग से नाप नहीं सकते। वो भगवान भक्तवत्सल हैं, वो भगवान सब जीवों से प्यार करते हैं, तो जीव जिस भी भाव से जाता है भगवान उसको वही दे देते हैं। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो शक्ति भी जो कि भगवान की उसी मोहिनी शक्ति का उपहार है, किंतु बेचारे कूप मंडूक दार्शनिक ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इस स्थिति को समझ नहीं सकते, उनको समझ में नहीं आता। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम 6.9.34 में कहा गया है, दुर्व बोध इव तवायम विहार योगो यद अशरणो शरीर अदम अन्वेक्षितास मत्समा वाय आत्मनैवा विक्रिया माणेन सगुणम अगुण सृजसी पासी हरसी। अर्थात इस तरह देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि उनके कार्यकलापों को समझ पाना अतीव कठिन है, भगवान को कह रहे देवता वो क्या कह रहे हैं कि दुर्व बोध इव तवायम विहार योग, आपकी जो शक्ति है, आपके जो कार्य हैं, उनको समझना बहुत कठिन है, किंतु जो लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निष्ठापूर्वक लगे रहते हैं वे उन्हें कुछ कुछ समझ पाते हैं। भगवान स्वयं उनको बुद्धि देते हैं तो भगवान को कुछ कुछ समझ पाते हैं। तो देवताओं ने स्वीकार किया कि यद्यपि भगवान भौतिक प्रभाव या सृष्टि से पृथक हैं, तो भी वे देवताओं के माध्यम से पूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। तो वहाँ पर देवता भगवान की स्तुति करते हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए भगवान भौतिक प्रभाव या सृष्टि से पृथक हैं, भगवान भौतिक जगत से अलग हैं, लेकिन फिर भी जैसा हमने सुना अभी विश्वरूप वाले में कि पहला वाला जो चैप्टर था विश्वरूप की सृष्टि, उसमें भगवान क्या करते हैं, तो भी देवताओं के माध्यम से विराट जगत का पहले सृजन करते हैं, फिर पालन करते हैं, फिर संहार करते हैं, लेकिन फिर भी इस जगत की माया से कभी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो शक्तिमान है और माया भगवान की शक्ति है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। मैत्रेय मुनि बहुत ही सुंदर रीति से विदुर जी के समस्त प्रश्नों का उत्तर देंगे और हम इन सबको श्रवण करके भगवान की प्रेम भक्ति के और निकट आते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।